एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
सृजनहारा तू है, तारनहारा तू है, मुक्ति दाता पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर पवित्र तू है, पवित्र पवित्र
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा से भर दे, हमें तेरे रास्ता में चला। मेरे हर एक श्रोताओं के संग हो पिता, तेरे वचनों से उन्हें आशीषित कर और मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे ताकि मैं तेरा वचन को तेरे इच्छा के अनुसार बतला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। आज का हमारा संदेश का शीर्षक है एक परमेश्वर एक प्रभु। एक ही परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन सशाश्वत व्यक्तियों की एकता। परमेश्वर अमर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ है एवं सदैव उपस्थित है। वह अनंत है एवं मनुष्य की समझ से परे है, तो भी उसके स्वप्रकटन के द्वारा उसे जाना जाता है। वह अनंत काल तक स्तुति आराधना व संपूर्ण सृष्टि द्वारा सेवा के योग्य है। कलवरी पर लगभग सभी ने यीशु को अस्वीकार कर दिया था, केवल कुछ ही ने पहचाना था कि यीशु वास्तव में कौन है। उनमें से वह मरने वाला चोर जिसने उसे प्रभु पुकारा, लुका 23:42, और वह रोमी सैनिक जिसने कहा सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था, मरकुस 15:39। जब यहूना ने लिखा वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, यहूना 1:11, वह क्रूस पर केवल उस भीड़ के बारे में नहीं सोच रहा था या इज़राइल के बारे में, परंतु प्रत्येक उस पीढ़ी के लिए जो जीवित थी। मुट्ठी भर को छोड़कर संपूर्ण मानवता कलवरी की उस उग्र भीड़ की तरह यीशु में अपने परमेश्वर और उद्धारकर्ता को पहचानने में असफल रही। वह असफलता मानवता की सबसे बड़ी और सबसे दुखद यह दर्शाती है कि मानवता का परमेश्वर के विषय में ज्ञान बहुत कम है। हम परमेश्वर का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत से सिद्धांत जो परमेश्वर को समझाने का प्रयास करते हैं और उसके अस्तित्व के पक्ष और विपक्ष में कई तर्क यह दर्शाते हैं कि मानव ज्ञान दिव्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। परमेश्वर के बारे में जानने के लिए केवल मानव बुद्धि पर निर्भर करना नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए एक अवर्धक कांच का उपयोग करने जैसा है। इसलिए कई लोगों के लिए परमेश्वर का ज्ञान एक गुप्त ज्ञान है। 1 कुरिन्थियों 2:7 उनके लिए परमेश्वर एक रहस्य है। पौलुस ने लिखा, जिसे इस संसार के किसी हाकिमों ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। 1 कुरिन्थियों 2:8 शास्त्र की आज्ञाओं में से सबसे मूल आज्ञा है, परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। 22:37 व्यवस्था विवरण 6:5 हम किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, फिर भी हम खोज कर परमेश्वर की गहरी बातों का पता नहीं लगा सकते। 11:7 फिर हम सृष्टिकर्ता को कैसे जान सकते हैं और प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर को हम फिर भी जान सकते हैं। मनुष्य की दुर्दशा को देखते हुए परमेश्वर अपने प्रेम व दया में हम तक बाइबल के माध्यम से पहुंचा। इससे पता चलता है कि मसीह धर्म मनुष्य का परमेश्वर को खोजने का अभिलेख नहीं है, यह तो परमेश्वर द्वारा स्वयं को प्रकट करने एवं मनुष्य के लिए उसकी योजनाओं का परिणाम है। यह स्व प्रगटीकरण एक विद्रोही संसार और एक परवाह करने वाले परमेश्वर के बीच की खाई को पाटने के लिए रचा गया है। परमेश्वर के महान प्रेम का प्रदर्शन उसके उत्तम प्रगटीकरण यीशु मसीह उसके पुत्र द्वारा आया। यीशु के द्वारा हम पिता को जान सकते हैं, जैसे यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। 1 यूहन्ना 5:20 और यीशु ने कहा, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। 17:3 यह अच्छा समाचार है। यद्यपि संपूर्ण रूप से परमेश्वर को जानना असंभव है, शास्त्र उसका एक व्यवहारिक ज्ञान देता है जो हमारे लिए एक बचाव संबंध में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। आइए हम परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करें। अन्य ज्ञान के विपरीत परमेश्वर का ज्ञान उतना ही हृदय का विषय है जितना कि दिमाग का। यह न केवल बुद्धि को परंतु संपूर्ण व्यक्तित्व को सम्मिलित करता है। पवित्र आत्मा के लिए खुलापन और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की तत्परता होनी चाहिए। 7:17 मत्ती 11:27 यीशु ने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। 5:8 इसलिए अविश्वासीगण परमेश्वर को समझ नहीं सकते। पौलुस ने पुकारते हुए कहा, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने अपने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता द्वारा विश्वास करने वालों को उधार दे। 1 कुरिन्थियों 1:20-21 जिस प्रकार हम बाइबल द्वारा परमेश्वर को जानना सीखते हैं, वह ज्ञान प्राप्त करने के अन्य सभी तरीकों से अलग है। हम स्वयं को परमेश्वर से ऊपर नहीं रख सकते एवं एक वस्तु के रूप में व्यवहार नहीं कर सकते जिसका विश्लेषण व परिणाम निर्धारित किया जा सके। परमेश्वर के ज्ञान की हमारी खोज में हमें उसके स्व प्रगटीकरण बाइबल को समर्पित करना होगा, क्योंकि बाइबल स्वयं का अनुवादक है, स्वयं वह अपना अर्थ बतलाता है। हमें अपने आप को उन सिद्धांतों और विधियों के अधीन करना चाहिए जो वह प्रदान करती है। इन बाइबल दिशा निर्देशों के बिना हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। यीशु के दिनों के इतने सारे लोग यीशु में परमेश्वर के स्वप्रगटन को देखने में क्यों असफल रहे? क्योंकि उन्होंने पवित्र शास्त्र के माध्यम से पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अधीन होना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने परमेश्वर के संदेश की गलत व्याख्या की और अपने उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ा दिया। उनकी समस्या बुद्धि की नहीं थी, यह उनके बंद हृदय थे जिसने उनके मनों को अंधकारमय कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शाश्वत नुकसान हुआ। परमेश्वर का अस्तित्व के बारे आइए हम पढ़ते हैं और जाने। परमेश्वर के अस्तित्व के लिए सबूत के दो मुख्य स्रोत हैं, प्रकृति की पुस्तक एवं पवित्र शास्त्र। सृष्टि से साक्ष्य, हर कोई प्रकृति या मानव अनुभव के माध्यम से परमेश्वर के विषय में जान सकता है। दाऊद ने लिखा, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। भजन संहिता 19:1। यहूना ने माना कि परमेश्वर का प्रकटन प्रकृति सहित हर मनुष्य को प्रकाशित करता है। यहूना 1:9। और पौलुस ने दावा किया, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और ईश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। रोमियो 1:20। मानवीय व्यवहार भी परमेश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण देता है। अज्ञात ईश्वर की एथेंस वासियों की आराधना में पौलुस ने परमेश्वर में विश्वास का प्रमाण देखा। उसने कहा, जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। प्रेरितों के काम 17:23। पौलुस ने यह भी कहा कि गैर मसीहों के व्यवहार ने उनके विवेक की गवाही दी और दिखाया कि परमेश्वर की व्यवस्था उनके हृदयों पर लिखी है। रोमियो 2:14-15। यह अंतर्बोध कि परमेश्वर का अस्तित्व है उनमें भी पाया जाता है जिनके पास बाइबल नहीं है। परमेश्वर के इस सामान्य प्रगटीकरण ने परमेश्वर के अस्तित्व के लिए कई शास्त्रीय तर्क वितर्क को जन्म दिया। शास्त्र से साक्ष्य, बाइबल परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं करती है, यह उसे मानती है। इसका शुरुआती पद यह घोषित करता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1। बाइबल परमेश्वर को सृष्टिकर्ता, निर्वाहक और सभी सृष्टि का शासक बताती है। सृष्टि के द्वारा परमेश्वर का प्रगटीकरण इतना शक्तिशाली है कि नास्तिकता के लिए कोई बहाना नहीं है, जो दिव्य सत्य के दमन से उत्पन्न होता है या उस मन से जो परमेश्वर के अस्तित्व के साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार करता है। भजन संहिता 14:1, रोमियो 1:18-22-28। किसी को विश्वास दिलाने के लिए परमेश्वर के अस्तित्व के लिए पर्याप्त सबूत हैं, जो गंभीरता से उसके बारे में सच्चाई की खोज करने का प्रयत्न करता है। फिर भी विश्वास एक शर्त है, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6। परमेश्वर में विश्वास हालांकि अंधा नहीं है, यह पर्याप्त प्रमाण पर आधारित है जो दोनों शास्त्र के माध्यम से परमेश्वर के प्रकटन में एवं प्रकृति के माध्यम से पाए जाते हैं। आइए हम शास्त्र का परमेश्वर के बारे अधिक और अधिक जाने। बाइबल उसके नाम, कार्यकलापों और विशेषताओं के माध्यम से परमेश्वर के आवश्यक गुणों को प्रकट करती है। परमेश्वर के नाम, जिस समय शास्त्र लिखे गए थे नाम महत्वपूर्ण थे, जैसे कि अभी भी पूर्वी क्षेत्र व पूर्वी गोलार्ध में है। वहां एक नाम वाहक के चरित्र, उसका वास्तविक स्वभाव और पहचान को प्रकट करने के लिए माना जाता है। परमेश्वर के नामों का महत्व उसके स्वभाव, चरित्र और गुणों का खुलासा करते हुए उसकी आज्ञा में प्रकट होता है। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। हम पढ़ते हैं इसे निर्गमन 20 का 7 में। दाऊद ने गाया, परम प्रधान यहोवा के नाम की महिमा करो, भजन संहिता 7 का 17। उसका नाम पवित्र और भययोग्य है, भजन संहिता 111 का 9। यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, भजन संहिता 148 का 13। इब्रानी नाम एल एव एलोहिम परमेश्वर, परमेश्वर की दिव्य शक्ति को प्रकट करते हैं। वे परमेश्वर को शक्तिशाली और पराक्रमी सृष्टि का परमेश्वर के रूप में चित्रित करते हैं। उत्पत्ति 1 का 1, निर्गमन 20 का 2 और दानियल 9 का 4। एलियोन परम प्रधान और एल एलियोन परम प्रधान परमेश्वर उसके उच्च दर्जे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उत्पत्ति 14 का 18 से 20 और यशायाह 14 का 14। अदोनाई प्रभु परमेश्वर को शक्तिमान शासक में दिखाता है, यशायाह 6 का 1, भजन संहिता 35 का 23। ये नाम परमेश्वर के प्रभावशाली और उत्कृष्ट चरित्र पर जोर देते हैं। अन्य नाम लोगों के साथ एक रिश्ते में प्रवेश करने की परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं। सदाई सर्वशक्तिमान और एल सदाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दर्शाते हैं जो आशीष एवं सांत्वना का स्रोत है, निर्गमन 6 का 3, भजन संहिता 91 का 1। याहवे नाम जिसका अनुवाद याहवा या प्रभु में हुआ, परमेश्वर की वाचा निष्ठा एवं अनुग्रह पर बल देता है, निर्गमन 15 का 2 और 3, होसे 12 का 5 और 6। निर्गमन 3 का 14 में यहोवा स्वयं को इस तरह वर्णित करता है, मैं जो हूँ सो हूँ, या मैं वही रहूंगा जो मैं रहूंगा। अपने लोगों के साथ अपने अपरिवर्तनीय संबंध को दर्शाता है। अनेक अवसरों पर परमेश्वर ने स्वयं को और अधिक गहन रूप से प्रकट किया, जैसे पिता व्यवस्था विवरण 32 का 6, यशायाह 63 का 16, यिर्मयाह 31 का 9 और मलाकी 2 का 10 में। इज़राइल को मेरा पुत्र एवं मेरा जेठा कहकर पुकारा, निर्गमन 4 का 22, व्यवस्था विवरण 32 का 19। पिता को छोड़कर परमेश्वर के लिए नए नियम के नाम पुराने नियम के समान अर्थ रखते हैं। नए नियम में यीशु ने पिता शब्द का उपयोग हमें परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत एवं प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने के लिए किया, मत्ती 6 का 9, मरकुस 14 का 36, रोमियो 8 का 15, गलातियों 4 का 6। परमेश्वर के कार्य, बाइबल के लेखक उसके होने से अधिक परमेश्वर की गतिविधियों का वर्णन करने में समय लगाते हैं। उसका सृष्टिकर्ता, उत्पत्ति 1 का 1, भजन संहिता 24, 1 और 2, संसार को कायम रखने वाला, इब्रानियों 1 का 3, एवं बचाने वाला और उद्धारकर्ता, व्यवस्था विवरण 5 का 6, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 19 के रूप में परिचय दिया जाता है, जो मानवता की अंतिम नियति का बोझ उठा रहा है। वह योजनाओं को बनाता है, यशायाह 46 का 11, भविष्यवाणियां करता है, यशायाह 46 का 10 और प्रतिज्ञाएं करता है, व्यवस्था विवरण 15 का 6, दूसरा पत्रस 3 का 9। वह अपराध क्षमा करता है, निर्गमन 34 का 7, एवं परिणाम स्वरूप हमारी आराधना के योग्य है, प्रकाशित वाक्य 14 का 6 और 7। अंततः शास्त्र परमेश्वर को शासक के रूप में प्रकट करते हैं, सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखा एकमात्र परमेश्वर, पहला तिमोथियस 1:17। उसके कार्यों से पुष्टि होती है कि वह एक व्यक्तिगत परमेश्वर है। हमें शास्त्र में पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर सचमुच में जीवता परमेश्वर है, जो हमारा सृष्टि करता है, बाइबल उसका अस्तित्व को समझाने का कोशिश नहीं करती है, बल्कि बाइबल उसके अस्तित्व को मानती है। आइए हम इस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर को माने जो हमारा सृष्टि करता है, उसकी उपासना करें, क्योंकि वह योग्य है। इसी में हमारा उन्नति है, भलाई है और हमारा जीवन का प्रोन्नति है। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, हम सबों को तो आशीष दे। हम तेरे वचनों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे काम के लिए। तू हमारा परमेश्वर है, हमारा सृष्टिकर्ता है, हम तुझे मानते हैं और तेरे पास आना चाहते हैं। हमें तेरे रास्ता में चला और तेरे राज्य में बचा ले पिता, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446 पुणे 411037 महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।